نہیں ہو پا رہا خدا نہ خواستہ تو پھر ہم وی آر ایٹ فالٹ سمجھے, کیونکہ یہ صرف جو ہے نا یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, اور اگر یہ باتوں کی حد تک رہ جائیں تو پھر بالکل بیکار ہے. جی یعنی کہ اگر یہ ایکٹیویٹی خالی باتوں کی حد تک رہ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ فیڈ بیک آپ بھی دیں گے, ہم بھی پوری کوشش کریں گے اس حوالے سے. یہ سب آج باتیں ہو رہی تھیں تو اسی پہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی ہم ان شاء اللہ وہ ساری باتیں کریں گے, خدا نے زندگی دی موقع دیا. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس بیریئر کو توڑنے میں کامیاب ہیں. جو ایک بیریئر ہمارے گرد لگا ہوا ہے نا, جو اس قید خانے میں ہم بند ہیں, وہ قید خانہ کیا ہے کہ جیسے ہماری سوچ صرف عذاب و ثواب کے دائرے میں بند رہتی ہے, ہم ریئل جو انسان کی لائف ہے جس طرف خدا نے اس کو دعوت دی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی قابل نہیں ہے. ہر چیز میں ہم ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے پھنسے ہوئے ہیں, بالکل ان نون ٹیریٹری میں بھٹک رہے ہیں. جب یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ کر کے ختم ہو جائیں گی اور ایک وہ انر پیس, کانفیڈنس, خدا پر اعتماد, وہ سب چیزیں آ جائیں گی, انشاءاللہ پھر ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اس گنجلک پن سے باہر نکلا جائے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے محسوس پھنسے ہوئے. جی اٹ ڈیپینڈز آن ٹو تھنگس, مطلب ایک تو یہی ہے ظاہر ہے کہ پہلی چیز تو ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور میرے لفظوں سے زیادہ میری نیت اور اخلاص پر ڈیپینڈ کرتی ہے. حقیقتا میری یعنی کہ الفاظ کا اثر بعد میں ہوتا ہے, کہنے والے کی نیت اور اس کے اخلاص کا اثر پہلے ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کے رسپانس دینے پر ہے. انہیں رسپانس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس حد تک قبول کرتے ہیں. قبول کرنا بھی ہے, اس میں پریکٹس کرنا بھی ہے, اس پہ غور و فکر کرنا بھی ہے, اس پہ کوسچن کرنا بھی ہے, اس پر عمل کرنا بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, تو یہ دونوں طرف سے انشاءاللہ
کوشش کرنی پڑے گی کہ اتنا آپ کی اتنی محنتیں ضائع
نہیں. اس میں دیکھیں اس میں ہماری یا کسی کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف بات یہ ہے کہ انسان, اور مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اس لحاظ سے آئی ایم ویری فارچونیٹ انف کہ میں اس پروسیس سے 3 دفعہ گزر چکا ہوں. یعنی اسی تربیت والے مرحلے سے نا میں 3 دفعہ گزر چکا ہوں. اچھا. لوگوں کے 3 گروپس کے حوالے سے, کرنے کے حوالے سے, اور اس میں یہ کہ خدا نے نتائج دیے ہر موقع پر, اور وہ نتائج اسی شکل میں برآمد ہوئے ہیں کہ جو افراد ہیں, جو حضرات ہیں, یعنی کہ اب وہ خود آپ سوچیں کہ بالکل جو ہمارے ہیں کہ جیسے حال ہوتا ہے کہ ان دا بگننگ, کہ مطلب قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے, اور وہاں سے آپ اس جگہ پہنچ جائیں کہ آپ آغا جوادی عملی کے دروس کو سنیں, سمجھیں, پڑھیں, یا علامہ طباء طبائی کو یا ان کو امام خمینی کو پڑھیں اور سمجھیں خود سے, تو یہ خدا کے فضل سے یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے. اسی ٹاپک سے, اسی ٹاپک سے متعلق. جی
والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما,
سورہ فرقان,
سورہ فرقان آیت 72.
جی
یہ نہیں سمجھ میں آئی میرے, اس کا ٹرانسلیشن گڑبڑ لکھا ہے, مطلب ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں ہے, کہ تو سامنے سوئی میں لکھا ہے and they do not bear witness to what is false and when they pass by what is vain they pass by nobly. کیا یہ یہ اس کا ٹرانسلیشن
لا یشہدون قول الزور. زور یعنی وہی جو بیہودہ گوئی فضول خرافات, ایسی کسی جگہوں پر وہ گواہ نہیں بنتے, یعنی ان جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے, کیونکہ گواہی کا مطلب ہے ایک جگہ پہ حاضر ہونا, اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا. تو قول الزور کے وہ شاہد نہیں بنتے, گواہ نہیں بنتے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہوں سے وہ ایبسینٹ ہیں. وَإِذَا مَرُّوا, اور جب گزرتے ہیں باللغوِ, ایسے مقامات پر جہاں لغو ہے یعنی بےہودگی ہے, خرافات ہے, فاحش ہے. مرو کراما, کراما کا مطلب ہوتا ہے کہ ان اے وے دیٹ دے آر ابو دیٹ لیول. کرامت کہتے ہیں بلندی کو, یعنی کہ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں, یعنی کہ ایک تو یہ کہ بذات خود وٹنس ہی نہیں ہوتے اس جگہ پہ, جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن اگر کبھی کسی لو چیز کے سامنے سے, کیونکہ جب ایک انسان وہاں بیٹھے گا نہیں تو ظاہر ہے لغو آئے گا تو گزرے گا وہاں سے, ہی ول پاس بائی فرام دیٹ پلیس, اور جب وہ گزرے گا تو کرامت کے ساتھ گزرے گا, یعنی میں تمہارے لیول پہ نہیں ہوں, تم سے بالا تر ہوں. یہ اس کا انداز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت کی معرفت کے حوالے سے ہم نے جتنے بھی گزارشات آپ کے سامنے کی, ان سب کا بیسک جو لب لباب ہے, جو مین ایسنس ہے, وہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے انڈیپینڈنٹ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہیں سے اس کا پورا مقدمہ یا بیسکس شروع ہوتی ہیں, اور یہاں سے گزرتے گزرتے یا ٹرانسفارم ہوتے ہوتے انسان کی زندگی اخروی ہو جاتی ہے. یہ بنیادی چیز تھی. اور اس میں پچھلی دفعہ, یعنی کہ اس سے پہلے, ہم نے جس پر کافی دقت صرف کی وہ یہ تھی کہ انسان جب اگلی دنیا میں موو کرتا ہے تو بنیادی طور سے کیا ہیں, تین چیزیں ہیں اس زندگی میں. اجل ہے کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ ایٹ اے سرٹن ٹائم پیریڈ. توفع ہے, توفع کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو بغیر کسی کمی بیشی کے اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہونا ہے, نفس کو, جسم کو نہیں, نفس کو. اور تیسری چیز تھی موت. یعنی موت بظاہر ہمارے لیے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بالکل ایک نہیں ہے, کیونکہ موت میں ایک, اگر آپ اس کو میت کے اعتبار سے لیں تو وہ جو زیادہ عام فہم اس کا ترجمہ ہے کہ زندگی کا ختم ہو جانا, وہ ہے مردہ ہو جانا یا میت ہو جانا. لیکن قرآن کریم میں اور آئمہ علیہ السلام کی روایات میں موت ایک ڈفرینٹ وے میں بھی آیا ہے, جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا. پچھلی دفعہ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد والی آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں, کہ جن میں تین مسلسل واقعات ہیں, اور اس میں دوسرے واقعے پر ہم نے بات کی تھی کہ جناب عزیر علیہ السلام کو جب اس بستی سے گزارا گیا اور وہ سارا واقعہ ہوا. تو میں نے وہی آپ سے کہا تھا کہ ہم عام طور سے جو ان آیتوں پہ نظر کرتے ہیں تو عام نتیجہ وہی نکلتا ہے, اور جو اہل سنت کے بھی زیادہ تر لوگ, کیونکہ ان کے علماء میں یہ گہرائی نہیں ہے عام طور سے, وہ ہمیشہ ظاہری اعتبار سے ہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان کا اٹھایا جانا, یعنی مردہ قبر سے دوبارہ ایسی جسم کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, یہی زمین دوبارہ بن جائے گی, یہی لائف دوبارہ کریٹ ہو جائے گی, اسی میں اچھے لوگ کو بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے, اینڈ سو آن. یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ویگ ہیں ان کے لیے. لیکن قرآن کریم, کیونکہ دیکھیں ایک لمیٹیشن ہے, وہ لمیٹیشن کیا ہے, الفاظ کی لمیٹیشن ہے, ورڈز کی لمیٹیشن ہے, یعنی محدودیت ہے کہ جو لفظ ہم جانتے اور پہچانتے ہیں قرآن کریم, انہی لفظوں میں ہی ہم کو چیزیں سمجھا رہا ہے. لیکن ان لفظوں کے ذریعے سے ان معاملات کو سمجھانا ہے جو بیونڈ میٹر ہیں, جو بیونڈ دا فزیکل ریلم, کہ ہمارے سامنے جو فزیکل ورلڈ ہے اس سے ماورا معاملات کو سمجھانے. یعنی کہ جیسے اسی لیے जब हम साइंस भी पढ़ते हैं कि जब हम साइंस में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हमें दिमाग काफ़ी चक्कर खाना शुरू हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ गया और वो इससे मिला और प्रोटॉन से, अब ना किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है ना प्रोटॉन देखा है ना कुछ किया। तो जब इन तमाम चीज़ों को कि जो हमने नहीं देखी भी होती हम उसको वर्ड्स में बयान करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी दुश्वारी होती है। तो कुरान करीम ने क्या किया है कि उन तमाम जगहों पर इशारे दिए जिससे हमारे जहन में सबसे पहले तो एक पिन चुभती है कि ये बात उस लाइन में नहीं की जा रही है कि जिस लाइन में हम आमतौर से उसको समझना चाह रहे हैं। और मैंने उसी हवाले से इन्हें कई जगह आपको बयान किया और इस वाक़े में भी जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम के, कि जब खुदा ने कहा कि तीन चीज़ों का जिक्र किया, हालांकि बात सीधी साधी होनी चाहिए थी कि भाई तुमको हमने दोबारा उठा के 100 साल के बाद जिंदा कर दिया, देखो तुम उठ गए और इस तरीके से लोग उठ जाएंगे। अगर इतनी सी बात होती कि लोग जो हैं अपनी कब्रों में से उठ के खड़े हो जाएंगे तो यहाँ बात काफ़ी थी। ये तीन मुख्तलिफ चीज़ों को तीन मुख्तलिफ अंदाज से बयान करने की क्या ज़रूरत है। फलयंजुर इला तआमिही व शराबिही लम यतसन्ना, कि नज़र करो अपने खाने की तरफ अपने पानी की तरफ कि उसमें लम यतसन्ना कि उसमें बू भी नहीं पैदा हुई, इट इज फ्रेश एज एवर। फिर उसके बाद वंजुर इलल हिमार, के नज़र करो अपने गधे की तरफ के जो जब कहा कि उसकी हड्डियां कैसे जोड़ते हैं, उस पर हड्डियों पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं पहनाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ज़ाहरी तौर पर उसके गधे के जो भी था जिस्म का सुरमा बन चुका था और उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, वरना खुदा उसको जोड़ने की भी बात नहीं करता। और तीसरी चीज़ वो खुद है कि जिसको बोले नज आला का आयतन लिन्नास, के ताकि हम तुम्हें इंसानों के लिए एक निशानी करार दें। इस तरीके से बात करने की ज़रूरत क्या है, समझ रहे हैं? यानी कि अब जो ज़ाहरी खाली देखने वाले उन्होंने ये समझ लिया हाँ वो गधे को खुदा ने ज़िंदा कर दिया, उनको सोते से उठा दिया, ऐसे लोग उठ के, लेकिन तीन अलग अलग चीज़ें क्यों और तीन के साथ तीन डिफरेंट किस्म के रिजल्ट क्यों? यानी आप खुद हैं तो आप खुद 100 साल तक बेखबर सोते रहें, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जो खाना और पीना है वो अपनी अपनी जगह, वो अपनी जगह बिल्कुल तरोताज़ा है, विच इज़ अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। 100 साल तक खाना थोड़ी बचा रहता है किसी का, या पानी अगर आप उसको छोड़ दें। और जो उनकी सवारी है उसका यह हशर हो गया। तो उसमें एक एहतमाल इन चीज़ों को गौर करने से ये पैदा होता है, ये बात समझ में आती है कि इंसानी वजूद की तीन डिफरेंट डायमेंशंस को समझाया जा रहा है कि जो इंसान का नफ्स है यानी जो इंसान खुद है वो आगे चला जाएगा, यानी खराबी उसमें भी नहीं होगी, लेकिन एक वो नींद का अमल है और उसके बाद दोबारा जागना है नफ्स के लिए। यानी नफ्स के लिए इस इंतकाल और क़यामत में उठने के दरमियान क्या है कि नींद जैसी कोई चीज़ है, ख्वाब वाली कोई चीज़ है। फिर एक वो शय कि जिसके ज़रिए से नफ्स ज़िंदा रहता है, यानी खाना और पानी जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसमें ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आया। और तीसरी चीज़ कि जो आपकी यानी नफ्स की सवारी है वो ख़त्म हो गई, जब नफ्स का उसके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, नफ्स दोबारा खड़ा हो गया तो उस चीज़ को भी खुदा ने ज़िंदा कर दिया। ठीक, तो आज यानी कि हम इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे इंशाल्लाह अब आखिरत के हवाले से, लेकिन आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि ये जो है नफ्स और रूह और जिस्म वाला मसला ये बिल्कुल ही पेचीदा है, ना समझ में आने वाला है। जैसे वही है कि भाई हर स्टेज पर क्लियर करें, बैकलॉग नहीं जमा करना है, वो पे बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भी और आप पे बाद में मुझे बुरा भला कहेंगे कि ये क्या बता दिया। तो हर स्टेज पर क्लियर करें कि ये जो चीज़ है, यानी कि पहली चीज़ क्या थी, अजल तवफ़ा और मौत, ठीक सही है कि ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद के खुद वजूद इंसानी, एक उसके रियल एसेंस है और दो कनेक्शंस हैं। इंसानी वजूद एक उसका रियल एसेंस है जिसको आप कह लीजिए मैं या جو میرا وجود ہے. اور وہ دو چیزوں سے, دو حقیقتوں سے کنیکٹڈ ہے. ایک حقیقت وہ ہے کہ جس جو اس عالم سے مربوط ہے جس میں آپ موجود ہیں, اور ایک حقیقت وہ ہے کہ جو اس ورلڈ سے کنیکٹڈ ہے جو ہم سے اوپر ہے اور جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا موو کر سکتے ہیں. اس حقیقت کو روح کہا گیا ہے کہ جو بالا تر کنیکشن ہے, کہ وچ انیبلز یو ٹو رائز. اور وہ حقیقت, وہ کنیکشن جو آپ کو اس دنیا میں چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل بناتا ہے, وہ جسم ہے. ٹھیک ہے.
تیسری چیز
نفس, یعنی میں. تو میں خود باقی رہوں گا, لیکن میں خود باقی رہوں گا روح اور جسم کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نفس سے روح اور جسم کو ہٹا لیجئے تو نفس خود نہیں چل پائے گا. کہ اگر ہم اس میں سے, خدا ہمیں اس دنیا میں سے یہ جسم ہٹا لے تو نفس ختم, فلوٹنگ اسٹیٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی میں ہوں, لیکن مجھے زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں, بلکہ ہر اینیمل کو دو چیزیں چاہیے, ایک انرجی, ایک باڈی. لیکن انسان کو جو خدا نے انرجی دی ہے یا جو کنیکشن دیا ہے, وہ باقی تمام اینیمل سے ڈفرینٹ ہے. اور وہ انرجی والا کنیکشن از پاسبل فار دا ورلڈ اباو. یعنی حیوانات میں یہ نہیں ہے, ان کے پاس انرجی ہے, یعنی روح ہے, روح ہے حیوانی ہے. پودوں کے پاس بھی روح نباتی ہے. اور اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آؤں گا نا, تو میں آپ کو پھر وہ امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ نے نفس اور روح دونوں کو الگ الگ کر کے ان کی قسمیں بتائی ہیں.
اچھا, روح جو ہے وہ کس فارم میں ہے؟ جیسے باڈی جو ہے انسان کا نفس جو دنیا میں ہے تو ایک فارم میں ہے.
نہیں, اس کی کوئی کچھ نہیں پتا. یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ اس لحاظ سے اپنی فارم اور کنڈیشن کے لحاظ سے ٹوٹل مسٹری ہے.
نفس کا تو سمجھ میں آتا ہے, نفس ایک ایسی چیز ہے جو لیونگ کرتی ہے, روح میں یا باڈی میں, دنیا میں تو باڈی میں. تو روح کا تھوڑا,
یعنی حقیقتاً سب ایک ہے. یعنی میں جب یہاں موجود ہوں تو میرے ساتھ جسم اور نفس اور روح ایک ساتھ ہے ملا ہوا.
ایسا تو نہیں ہے,
اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں کہوں کہ یہ میرا جسم ہے, یہ میرا نفس ہے, یہ میری روح ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ ڈفرینس کب سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے. کہ انتقال کے وقت جب ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ جسم جو ابھی چل پھر رہا تھا, یہ جو بول رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اب اس میں کوئی کیپیبلٹی باقی نہیں رہ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس جسم میں پہلے کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ دیکھ سن رہا تھا, چل پھر رہا تھا, اور اب وہ چیز اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, تو اس میں وہ تمام کیپیبلٹیز ختم ہو گئیں یا وہ اس سے محروم ہو گیا. تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جو ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی,
انرجی کی فارم میں تو نہیں ہے. جیسے اگر آپ سائنس کے اس سے بھی دیکھیے تو انرجی جو ہے وہ میٹر میں چینج ہو سکتی ہے اور میٹر انرجی میں کبھی بھی.
لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ انرجی بذات خود کیا ہے. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ میں ان ریڈیو ویوز کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے میرے ٹی وی پر تصویریں ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں, آپ اس کو ڈی ماڈیولیٹ کرنے کے بعد وہ سگنلز دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس ویو کو نہیں دیکھ سکتے, اس انرجی کو نہیں دیکھ سکتے. یا جیسے خود ہمارے علماء نے بھی, میں نے بھی آپ کے سامنے یہ بات کی تھی شروع میں, کہ لائٹ انرجی ہے, لیکن اس انرجی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. مطلب ہم روشنی کو نہیں دیکھتے, روشنی کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. کہ یہاں سے وہاں دیوار ہے, اب دیوار کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے. صحیح ہے, ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لائٹ اس پورے کمرے میں, لیکن اس پورے کمرے میں لائٹ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے سب کچھ آپ کے سامنے. جب یہ لائٹ کسی آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے میری نظر تک پہنچ رہی ہے, تب میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں.
اگر آپ اس طرح کے ٹولز ہوں کہ ہم لائٹ को हम वो कर सकें जो उसके पार्टिकल्स में होती
है? अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, मतलब इसमें ना ये बात कि कोई तस्लीम कर रहा है अभी तक, या ना उस बहस में आप चले जाएं तो वो वैसे भी हाँ, लेकिन कोई भी नहीं देख पाया ना किसी एनर्जी को। नफ्स इवॉल्व होता रहता है जी,
और जो रूह है वो क्या वो तो एक ही फॉर्म होगा क्या?
रूह जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक कनेक्शन है, बल्कि इसको यूं कहा जाए कि जब हर इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर वो रिसीवर मौजूद होता है कि जो आलम बाला से कनेक्ट हो सके, यानी रूहानियत का पोटेंशियल होता है हमारे अंदर, ठीक है। ज़्यादातर अफराद उस रिसीवर को ख़राब कर देते हैं, तो उनके पास रूह अमरी में से कुछ भी नहीं होता, वो रूह हैवानी तक ही होते हैं। हाँ, यानी एक रूह जैसे है कि रूह नबाती है, रूह नबाती है कि रूह नबाती क्या है, जो नबातात यानी प्लांट्स में पाई जाती है, वो रूह क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो ग्रो करता है। रूह हैवानी है, रूह हैवानी क्या है, यानी कि जानवर का चलना फिरना या अपने लिहाज से बोलना चालना, ये रूह हैवानी है। ये इंसान के पास भी है, और रूह हैवानी इंसान के पास हैवान से ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी वही क्वालिटीज़ के जो जानवर के पास हैं, हैवान के पास हैं, वही इंसान के पास हैं, लेकिन उससे बेहतर हैं। और उसकी दलील सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 लकद करमना बनी आदमा, कि खुदा कह रहा है कि हमने बनी आदम को, औलाद आदम को करामत दी, और जो चीज़ें दूसरी मखलूकात को दी हैं उनमें इसको फजीलत दी। फजीलत का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होता है इन कंपैरिजन, करामत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक नई क्वालिटी देने में, सही। यानी खुदा ये कह रहा है कि जितनी क्वालिटीज़ दीगर मखलूकात के पास हैं उनमें इंसान को फजीलत है, और करम ना, और इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो बाकी किसी के पास नहीं है, ये करामत है। करामत यानी वो बुलंदी, स्पेशल बेनिफिट। तो इंसान के पास जो स्पेशल चीज़ है वो रिसीवर है जिसके ज़रिए से वो अपने ऊपर वाले आलम से कनेक्ट हो सकता है। उसको आप कह लीजिए इंसान की रूहानियत कह लीजिए, या इंसान की रूहानी कैपेबिलिटी कह लीजिए। लेकिन हम अगर चाहें तो उस रिसीवर को ख़राब भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में। और ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं, ज़्यादातर अफराद इस ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जो उस सूरतुल आराफ की आयत 179 पर पूरा उतरते हैं। वो कौन सी आयत है? वलकद ज़रअना लिजहन्नमा कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, कि ज़्यादातर जिनों और इंसानों में से लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो जहन्नम के काबिल हो जाते हैं। क्यों? उसके रीज़न भी बयान किया गया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, कि उनके कुलूब हैं लेकिन उसके ज़रिए से वो किसी गहराई में नहीं जाते। वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनकी आँखें हैं लेकिन उससे बसीरत नहीं हासिल करते, यानी चीज़ों को देख के गौर नहीं करते, समझते नहीं हैं। वलहुम आवानुन ला यस्मऊना बिहा, कान हैं लेकिन समाअत नहीं है, समाअत से मतलब समझ नहीं है। जी जी, तो खुदा ने हमें समा और बसर और कल्ब और इसके सूरत में क्या दिया है? वो रिसीवर दिया है कि अगर उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो हम ऊपर वाले आलम से कनेक्ट हो जाएं। यानी वो रूह है अमरी, वो रूह है हैवानी नहीं, रूह हैवानी से ऊपर जो वाली जो रूह है वो है रूह अमरी। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, कि ये लोग तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के अम्र से, वो रूह हम इस रूह की इस एनर्जी की बात नहीं कर रहे जो इस एनिमल डोमेन में पाई जाती है, बल्कि उस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो जिसका ताल्लुक आलम मलकूत से। ठीक है, तो इंसान को क्या करामत नसीब हुई है कि उसके पास वो रिसीवर मौजूद है, उसके पास वो सलाहियत मौजूद है कि वो रूह अमरी से कनेक्ट हो सकता है। ये एक बात ऐसी है कि जिसको समझने में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि दुश्वारी महसूस होती है। जब हम कहते हैं ना कनेक्ट हो सकता है तो इस पे लोग परेशान होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो नफ्स और रूह को कन्फ्यूज़ करते हैं हमेशा कि मैं जिंदा हूँ, ये मैं जिंदा होना मेरा नफ्स है, ये रूह नहीं है मेरी। रूह वो कनेक्शन है जो मैं डेवलप करूँगा अपने से बालातर जहान के साथ। यानी कि जो कुरान ने जिस लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया है वो ये, हम आम तौर से क्या कहते हैं कि मेरी रूह, यानी हम नफ्स को रूह कह रहे होते हैं। इसलिए जब हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना कि आप रूह को हासिल कर सकते हैं, तो वो परेशानी शुरू हो जाती है कि ये क्या बात हुई। नहीं, जो मैं है वो रूह नहीं है, मैं नफ्स है, और नफ्स से इंसानी को खुदा ने ये कैपेबिलिटी दी है कि वो रूह अमरी को हासिल कर सकता है, यानी उस कनेक्शन को डेवलप कर सकता है। वरना अगर रूह अमरी नहीं है तो फिर उसके बाद वो सारी वो रूहें हैं नबाती और शहवानी, यानी कि चार पांच किस्म की रूहें जो आपने बयान फरमाई हैं कि रूह शहवत है, रूह बदन है, रूह गज़ब है, ये सब चीज़ें कि यानी कि जो वो एनर्जीज हैं कि जो इंसान को ये सब उमूर के लिए काबिल बनाती हैं। जी जी,
ये कहना सही होगा कि आलम मलकूत में our connection to the body is being disconnected and our connection to the room is become stronger.
नहीं, जब आप इसको समझ लेंगे ना पहले स्टेज पर कि इंसान का नफ्स हमेशा दो चीजों के साथ चलता है, एक जिस्म एक रूह। अच्छा, रूह बहरहाल वो एनर्जी है और जिस्म वो बॉडी है जो, तो हम जब आखिरत में चले जाएंगे, आखिरत मलकूत है, तो हम जब उस आलम में भी चले जाएंगे तो भी जिस्म रहेगा, वो डिफरेंट जिस्म होगा, वो जिस्म होगा कि जो उसकी मुनासिबत से होगा। जैसे अभी मेरे पास वो जिस्म है जो इस वर्ल्ड की मुनासिबत से,
लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जी, अगर मैं ये चाहूं कि आप अपनी उस कनेक्शन को, रूह के कनेक्शन को मलकूत तक पहुंचने की जरिया,
तो जिन लोगों के पास वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है वो अपनी जिस्मानियात पर मुकम्मल तौर से गालिब आ जाते हैं। यानी कि फिर ऐसा नहीं होता कि उसके लिए पाबंदी नहीं है, अगर कि हम इस जिंदगी में रहते हुए अगर मलकूत से कनेक्शन में आ जाएं तो इस पे पाबंदी नहीं है, रुकावट नहीं है उसके लिए, इवन आपको जिस्म को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप वो कनेक्शन हासिल कर लेंगे तो इस जिस्मानियात पर आप टोटल कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि जैसे हम आइम्मा के हवाले से जो चीज़ें जो बातें पढ़ते हैं वो समझ में आती हैं अकली तौर से कि जो इंसान उस दर्जे तक पहुंच जाता है या जिसके पास वो, बल्कि आइम्मा का कनेक्शन तो मलकूत से बहुत ऊपर का है, सिर्फ मलकूत ही नहीं है वो तो बिल्कुल टॉप लेवल का कनेक्शन है।
एक और क्वेश्चन जी के हवाले से, जैसे आपने कहा कि रूह है नबाताती, रूह
है हैवान,
और दीज रूह दे एग्जिस्ट इन पैरेलल
जी, यानी कि वो एनर्जीज हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं।
नफ्स कैन टेक इज गवर्नड बाय दीज,
नफ्स जो है वो उन सब से, यानी कि जैसे आप इसको देखिए, आप इसको यूं कहिए कि आपका जो टेलीविजन का रिसीवर है या पूरा का जो टेलीविजन की जो पूरी सर्किटरी है, ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन जब तक वो उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होती, यानी कि उसको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए, एक तो पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन सिर्फ पावर सप्लाई देने के बाद भी टीवी नहीं चलता, उसके फिर उन तमाम रेज को के जो फ़ज़ा में मौजूद हैं उसको कनेक्ट, उनसे कनेक्ट होना है, उसके लिए उसके रिसीवर को एक्टिव होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर कि उसके अंदर जो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर सर्किट है जो रिसीवर के साथ है कि जो पहले वेव्स को रिसीव करता है फिर उसको डीमोड्यूलेट करता है और फिर उसको आवाज़ और उसमें कन्वर्ट करता है। आप खाली पावर सप्लाई दे दें, वो मॉडेम सर्किट ख़राब हो, तब भी टीवी बेकार है। तो इसी तरीके से यानी कि ये मेरा नफ्स मौजूद है, लेकिन नफ्स बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि नफ्स को आप तन्हा छोड़ दें, वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ठीक है। उसको दो चीज़ें चाहिए, एक बॉडी चाहिए जिसके बिना बॉडी के ज़रिए से वो उस वर्ल्ड में मूव करेगा जिसमें वो ज़िंदा है, और फिर उसे एक एनर्जी चाहिए। यानी कि आप इस चीज़ पे कभी भी गौर कीजिए, ये बहुत डीप कंसेप्ट है कि हमारे अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रुझानात पैदा होते हैं बेसिकली वो एनर्जी की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर हम में एक शहवत पैदा होती है कि मुझे खाना चाहिए। अब ये क्या चीज़ हो रही है, यानी आप उसको बायोलॉजिकली कहेंगे जनाब ये केमिकल्स हो गए, वो हार्मोन्स रिलीज हो गए और उसमें ये एंजाइम्स पैदा हो गए और उसकी वजह से ये हो गया, वो कुछ भी हो रहा है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कुछ भी है, लेकिन उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है। जितने भी सिस्टम्स मेरे और आपके बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं सब के सब इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं। यानी इंटेलिजेंस सिर्फ इंसान के नर्वस सिस्टम में नहीं पाई जाती है, जितने भी सिस्टम्स हैं, इम्यूनिटी यानी नर्वस सिस्टम के बाद कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है बॉडी में वो इम्यूनिटी सिस्टम है। आपका डाइजेस्ट हर सिस्टम में इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब है कि कोई एक एनर्जी पूरी है, बाकायदा एनर्जी का एक निज़ाम है, तवानाइयों का एक निज़ाम है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी से नहीं आ रहा है सब कुछ। तो हमारा जो पूरा वजूद चल रहा है वो एक तरफ एनर्जी पे बेस कर रहा है, एक हमारी बॉडी है जो बेसिक एक टूल है, ठीक है ना, जिसके जरिए से हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज हर वर्ल्ड में ऐसी रहेगी, सिर्फ उसकी नौइयत बदल जाएगी। यानी जब हम आखिरत में जाएंगे तो आखिरत में भी एक जिस्म होगा और इसी तरीके से एनर्जी होगी चलाने वाली, लेकिन वो ये नहीं होगी जो इस जिंदगी में पाई जाती है, उसकी नफ्स वही रहेगा। यानी हम मैं और आप वही रहेंगे, बट वी शैल बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। यानी यही नफ्स है, लेकिन अब वो बिल्कुल किसी और चीज का तजुर्बा कर रहा होगा वहां पे जाके। जी आप
क्वेश्चन ये है कि जब इंतकाल हुआ तो रूह चली गई, जिस्म यहां रह गया,
नफ्स नफ्स मुतवफी होता है
नहीं, तो ये दो अलग अलग डिटैच हुए नहीं हुए, ये क्वेश्चन ये कि ये नफ्स और रूह डिटैच हुए या नहीं हुए।
देखिए रूह जो है वो एक अलग चीज है, वो एक कनेक्शन है
भाई, ठीक है। दुनिया में हम लोग समझ में आ रहे हैं कि रूह कनेक्शन है, बॉडी यहाँ की है, नफ्स रियलिटी है जो जो हम है, ठीक है। रूह जो जब इंतकाल हुआ तो नफ्स ट्रांसफर हो गया, बॉडी यहीं रह गई, तो रूह नफ्स के साथ वहां ट्रांसफर हो गई।
अगर उसने इतनी रूहानियत पैदा कर ली अपने अंदर तब ऐसा ही होगा, यानी ये डिपेंड करता है। अगर नफ्स ने सारी की सारी तवज्जो जिस्म पे रखी जिंदगी में तो वो यहाँ से जाएगा, लेकिन उस पर तमाम जिस्मानी असरात का गलबा होगा। समझ रहे हैं इस बात को,
मतलब रूह एक अपना इम्प्रिंट छोड़ के जा रही है।
हाँ, इम्प्रिंट जिस्म का भी है, इम्प्रिंट रूह का भी है, और ये डिपेंड करेगा इस चीज पर कि नफ्स ने कॉन्शियसली अपने इरादे से अपने इख्तियार से किस असर को ज्यादा कबूल किया। यानी मिसाल के तौर पर जब आप नमाज की तरफ जाते हैं तो वो नमाज दर हकीकत आप में वो रूहानी असरात पैदा कराती है। आप आम पंचगाना नमाज पढ़ते हैं उसका रूहानी असर और है, नमाज शब पढ़ते हैं उसका रूहानी असर और है, एंड सो ऑन। यानी कि जितनी चीज़ें भी, जैसे उस दिन भी मैं एक बात कर रहा था कि बुनियादी तौर से शरीयत हमको इसलिए नहीं दी गई है अजाब सवाब के लिए, बल्कि शरीयत हमको दी गई है विलायत खुदा को हासिल करने के लिए। यानी वही वो जो आलम बाला के असरात हैं, खुदाई सिफात हैं, वो उसका असर नफ्स पे ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाए। यानी इसकी मिसाल भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी एक दी है इसी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के नफ्स की, कि जिसमें आप फरमाते हैं कि लोहे का एक टुकड़ा है उसको तुम आग में डाल दो, तो शुरू शुरू में वो लोहे का टुकड़ा अपनी हालत में बाकी रहता है, फिर रफ्ता रफ्ता वो गर्म होना शुरू होता है, पहले उसकी हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रफ्ता रफ्ता ऐसा हो जाता है कि वो खुद आग बन जाता है। तो ये नफ्स से इंसानी में ये क्वालिटी खुदा ने दी है कि वो जिस आग की तरफ मुतवज्जे हो जाए उसके असरात आ जाएंगे इस पे।
तो
यानी जैसे हम मुसलसल जिस्म के साथ लगे हुए, तो मेरा नफ्स ये महसूस करता है कि मैं ये जिस्म मादी हूँ। अब इसके बरक्स मिसाल के तौर पर अगर आयतुल्ला बहजत या इस कस्म के लोगों को देखा जाए तो उनके नफ्स में ये असरात नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के असरात हैं जिसको उनका नफ्स रिसीव करता है और जिसके साथ वो आगे जा रहा है।
अगर ये एग्जांपल को और गौर से सोचे तो क्या ऐसा नहीं है कि और वही क्वेश्चन से रिलेटेड कि लोहे का टुकड़ा ब्रिक हो लोहे का, उसको डाला आग में, वो थोड़ी देर बाद आग बन गया, अब जब आग से निकाला तो थोड़े टाइम तक उसका वो रहेगा, लेकिन आग का वो वापस तो बन जाएगा लोहा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी उसकी,
उससे निकले नहीं नहीं अब
डिफॉर्म हो जाएगा,
नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं 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 इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि निकाला क्यों,
इंतकाल
इंतकाल निकालना नहीं है, इंतकाल उसी रास्ते पर और आगे चले जाना है,
लेकिन
इंतकाल मतलब जो मिसाल के तौर पर जो नफ्स
तो चली गई ना फिर।
जो नफ्स तो उससे बालातर दर्जे की रूह मिल जाएगी। यानी कि जब वो एक लेवल की रूह, जैने मिसाल के तौर पर उसने रूह मलकूती के लिए क्वालिफाई कर लिया और उस रूह से कनेक्ट होने के साथ उस वो इंतकाल किया, उसने मुंतकिल किया, तो उससे रूह आलम जबरूत मिल जाएगी।
तो कि जैसे दुनिया में कोई इंसान दुनियावी उसमें बहुत ज्यादा वो है और वो इंतकाल कर जाता है तो उसकी रूह भी यही रह जाती है, नफ्स
उसके पास रूह है ही नहीं। अगर आप रूह है, रूह को रूह है एक मिनट एक एक नहीं नहीं एक मिनट पहले एक डेफिनेशन बहुत क्लियर कर लें कि रूह की अकसाम है। मैं जब रूह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं हमेशा रूह अमरी की बात कर रहा हूं, मैं हैवानी या नबाती रूह की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, सही है। तो जिस जो इंसान टोटली जिस्मानी और मादी जिंदगी गुजारता है उसके पास रूह होती ही नहीं है, रूह ही नहीं होती, वो बगैर रूह। यानी ये जुमला ऐसे मैं कहूंगा ना परेशान हो जाएंगे, क्या बात है बगैर रूह, बगैर रूह अमरी जी, उसके पास सिर्फ वो एनर्जीज हैं कि जो एनिमल एनर्जीज हैं, उसके पास वो एनर्जीज हैं जिससे बॉडी ग्रो करती है, लेकिन उसके पास वो एनर्जी नहीं है कि जो आलम फरिश्तगान से कनेक्ट कराती है इंसान को या नफ्स को।
लेकिन एक बात अभी जो वसी ने की कि जब हमारा इंतकाल के बाद कनेक्शन तो बॉडी से खत्म हो गया तो जो असरात थे बॉडी के नफ्स पे वो फिर रहेंगे, बट दे विल
बिल्कुल रहेंगे
जी,
लेकिन वो पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम बहुत लॉन्ग है और बहुत तकलीफ दे जी। देखिए इस पर मैं आपको वैसे सुनाऊं कि कुछ हमने वैसी स्टडीज पढ़ी हैं जो नॉन इस्लामिक है, हिप्नोटिक हिप्नोटिस्ट कुछ लोगों के उनके अकाउंट्स, तो उसमें उन्होंने खुद ये चीज़ बताई, बल्कि श्रीलंका में जाके मोराटुआ एक जगह है जज़ायर है वहाँ पे, तो वो ऐसे हिप्नोटिस्ट था, वो इस तरीके से काम करता था कि उसने एक लड़की को मीडियम बनाया था और उसको वो ट्रांस में ले जाता था लड़की को जो जिंदा है, और जो मरे हुए लोग होते थे उनकी रूहों को, रूहें तो मैं जनरली उनके नफूस को वो उस लड़की के जिस्म में बुला के और उससे कम्युनिकेट करता था। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि एक लड़की है, एक लड़की है, उसको उसने हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करने से क्या होता है कि गोया उसका नफ्स आपके कंट्रोल में आ गया, तो अब उसके बॉडी में کسی مردہ کے نفس کو بلا کے اور اس سے کمیونیکیٹ کرنا, یہ سسٹم تھا. تو وہاں پر ایک شخص تھا دیہاتی جو تھوڑے دن پہلے مرا تھا, اور وہ اس طریقے سے مرا تھا کہ وہ کسی درخت ورخت پہ چڑھا تھا کچھ کرنے, پھل توڑنے یا لکڑیاں کاٹنے, وہاں سے وہ نیچے گرا. اس پہ وہ گوشت خور چونٹیاں تھیں بڑی بڑی وہاں پہ, اور وہ نیچے گرا, وہ ساری چونٹیاں اس کو چمٹ گئیں اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی. تو ظاہر ہے آپ سمجھیں کس قدر تڑپنا اور اذیت والی موت ہوگی. تو جیسے ہی اس نے اس کو, اس آدمی کو بلایا اس کی لڑکی کے جسم میں, تو وہ لڑکی حالانکہ خواب میں بالکل سو رہی, لیکن اس کا جسم برے طریقے سے تڑپنا شروع ہو گیا. اسی حالت میں وہ مر چکا ہے وہ شخص. تو اس نے جو ہپنوٹسٹ ہے اس نے اس کو آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ ناؤ یو آر ناٹ ان یور باڈی, اب تم اپنے جسم میں نہیں ہو, دیٹ فیز از اوور, وہ تکلیف ختم ہو چکی ہے, وہ سب ہو چکا ہے. تو پھر جب اس کو ایسے بار بار بولتا رہا نا, بولتا رہا, تو پھر رفتہ 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 کر کے اس کے جسم پرسکون ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ وہی چیز ہے کہ نفس جس حالت میں آج بھی آغا جوادی عاملی کے دروس سن رہا تھا, اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگ اس حالت میں انتقال کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے, اور ان کا جو نفس ہے وہ بالکل ایک فروزن اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ آف دیئر باڈیز. ٹھیک ہے, تو اس میں اب اسی لیے, یعنی کہ پھر انہوں نے کہا کہ اسی لیے تلقین کی اتنی اہمیت ہے, اسی لیے مغفرت کی اتنی اہمیت ہے, کہ جب آپ ایک اس کو دفن کرتے ہیں, مردے کو دفن کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو کندھا ہلاتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں, تو گویا آپ اس کو باخبر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب تم اس اسٹیٹ میں نہیں ہو, اب تم کسی اور جگہ جا چکے ہو, اور اینڈ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ کہ جس جگہ پر, ورنہ اتنا وحشت زدہ ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے, انہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہوتا. اب جیسے خدا نخواستہ جو ایکسیڈنٹ میں مرا, جو اذیت میں مرا, جیسے اس انسان تھا, وہ اس پہ وہی کیفیت تاری ہے, حالانکہ وہ اس کا نفس اپنے جسم کو چھوڑ چکا ہے, لیکن وہ اسی اذیت کو مسلسل محسوس کر رہا ہے. نہیں مسیح بھائی, بنیادی طور سے یہ عقل کوئی الگ چیز نہیں ہے جو یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عقل کا مطلب بھی ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ یو ڈیولپ یور اون نفس. زیادہ تر انسان بے عقل اور بے روح ہیں. یہ جو ہے نا, یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اور یہی انبیاء کا دکھ ہے.
نہیں, ہم وہ
علی
عقل کی بات نہیں, صاحب
نہیں, وہی
جو وہ عقل تو پراپر عقل ہے, ہم جو عقل کی بات کر رہے ہیں وہ
دنیاوی عقل.
ہاں, جو جیسے سینسری ایکشن, سم ری ایکشن,
وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو فزیکل.
تو نفس کے بعد وہ سب تو پروسیس کرنے کی کیپیبلٹی,
وہ سب تو باڈی کے ساتھ ہے نا آپ کے.
تو جیسے ہی وہ باڈی میں آیا, وہ واپس سینسری ایکشن وہاں پر شروع ہو گیا. تو اس کا میرے خیال سے کچھ ہے.
میں نے آپ سے کہا نا کہ جو خالی نفس ہے, خالی نفس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک وہ ان انرجیز سے یا باڈی سے کنیکٹ نہیں ہوتا, اس وقت تک نفس خود کچھ نہیں کر سکتا.
اچھا, ہمیں ایک سوال بیچ میں آ رہا ہے, بس وہ اسی کے اثر نے بھی سوال کیا تھا پہلے, اس سے ہی ملتا جلتا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں, ایک تو ہماری باڈی ہو گئی جو ہمیں پتہ ہے میٹر ہے, اس کے بعد جو آپ نے روح کی بات کی, یا جو میں خود ہوں.
نہیں, نفس میں خود ہوں.
اچھا, نفس میں خود.
جی,
تو وہ انرجی کی فارم میں ہے, کسی نہ کسی فارم میں تو ہوگا.
بالکل,
وہ انرجی کی فارم میں ہے, تو پھر روح کس فارم میں ہے؟
اس سے فائدہ نہیں ہے ہمیں, کیونکہ اس جگہ پر ہم اس چیز کو کچھ بھی کر لیں, اس جس جگہ پر ہم ہیں نا, کچھ بھی کر لیں, اس کو نہیں سمجھ سکتے.
اچھا,
اس سے اس بحث کا فائدہ نہیں ہے.
ٹھیک, میں
دیکھیے, یعنی کہ جیسے یہ وہ میں اس سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہم نے نان اسلامک سورسز سے چیزیں پڑھی ہیں. ایک میں جو اس کا نام نہیں یاد ہے کہ اس شخص کا کیا تھا, یہ کتاب اس کی ہے, ہیرلڈ شرمن, کافی مشہور ہے اسی اس میں ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز اور اس قسم کی چیزوں میں. उसने अपने एक दोस्त का तस्करा किया है कि जो वो था नाइटेड था, मतलब सर वगैरह कुछ के, और उसके आर्कटिक की रिसर्च में उसके बड़े कंट्रीब्यूशन हैं नॉर्थ पोल के। तो उसने कहा था कि हम दोनों ने आपस में इस तरीके से वो किया था कि हम मीलों दूर बैठ के एक दूसरे के साथ अपने जहनी उससे कम्युनिकेट करते थे, और वो था, और फिर हमारा ये भी था कि जो पहले मरेगा वो बाद में आएगा। उसने कहा कि उसके मरने के बाद मेरा दोस्त कुछ अरसे तक मेरे थॉट्स में आता रहा, यानी वो मेरी थॉट्स के थ्रू से मुझसे कम्युनिकेट करता रहा। तो उसने कुछ बातें की थी, अच्छा हो सकता है कि बकवास हो, लेकिन उसने जो बातें कही ना बहुत स्ट्राइकिंग है, यानी कि वो बातें, क्योंकि बाज़ोकात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद बता देती हैं कि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। उसने कहा कि यानी जो मरने वाला है, उसने कहा कि मैंने कोशिश की कि अब मैं जिस्म से आज़ाद हो गया हूँ तो मैं इंसान की सोल की रियलिटी को देख सकूँ या उसका पता चला सकूँ कि वो क्या चीज़ होती है। तो उसने कहा कि इट लुक्स लाइक टू मी द अल्टीमेट मिस्ट्री, यानी इंसानी नफ्स जो है दैट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय सम फॉर्म एंड शेप, लेकिन उसकी खुद फॉर्म एंड शेप क्या ही नहीं समझ में आती, यानी वो खुद क्या चीज है, उसकी खुद क्या हकीकत है, अगरचे कि उसको घेरे रहता है कुछ ना कुछ, कि इवन थॉट्स हैं, थॉट्स की भी शायद कोई शेप हो, लेकिन वो खुद क्या है। और ये बात हमें समझ में आती है, यानी कि मुझे जुमला क्यों स्ट्राइकिंग लगा, इसलिए कि खुदा ने नफ्स, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने नफ्स की मारिफत को रब की मारिफत के पैरेलल रखा है। अगर अगर नफ्स की मारिफत इतनी ही सादा कोई चीज होती कि जो हम इस तरीके से बैठ के समझ लेते, तो मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू का जुमला कभी नहीं आता। सही है, या इसी तरीके से जैसे मैंने मौत के हवाले से भी आपसे कहा था कि मौत खाली अगर मर जाने को कहते तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला कभी नहीं हमारे सामने आता कि मैंने अपनी जिंदगी सर्फ की कि मौत के असरार को बेनकाब कर दूं, लेकिन मशीयत इलाही यही थी कि इसके असरार पे पर्दा पड़ा रहे। अगर मौत इतनी कोई सादा सी चीज होती कि जीने वाले का मर जाना, तो ये जुमला कभी नहीं होता। फिर तो ये सब कुछ हमें समझा रहा होता है कि इसलिए मैंने कहा कि ये नफ्स और रूह आप तलाश करने की कोशिश करेंगे ना उस शक्ल में, इम्पॉसिबल है।
तो खुदा का जो फॉर्म है,
खुदा की कोई फॉर्म नहीं है।
तो नफ्स मतलब उसी तरह नफ्स जैसे है, नफ्स के भी कोई फॉर्म नहीं है।
जी, यानी कि जैसे अब आप उसको मिसाल से समझिए,
तो नफ्स एक नफ्स है।
अब मैं देखिए आपको मिसाल से समझाता हूँ, आप इस पर गौर कीजिए। आपके हाथ में आप हैं, ठीक है, आपके इरादे से ये चलता फिरता है। आपकी जबान में आप हैं, आपकी आंख में आप हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है कि जो इस टुकड़े से चीज़ों के जायके को चख लेती है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स से चीज़ों को देख लेती है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स से आवाज़ों को सुन लेती है, वो कौन सी चीज़ है?
सेंसेस नहीं कहेंगे, जैसे इंसान।
वो चीज़ क्या है कि जो देख रही है? आंख थोड़ी देख रही है, जबान थोड़ी चख रही है, जबान जबान थोड़ी चख रही है, कान थोड़ी सुन रहा है। इंटेलिजेंस क्या चीज है? इंटेलिजेंस किस क्या चीज है? ये है नफ्स, ये है नफ्स, ये आप है कि जो इस ग्रुप ऑफ सेल्स से चख रहे हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल्स से देख रहे हैं, इस ग्रुप ऑफ सेल्स से सुन रहे हैं, आप खुद क्या है? लेकिन आप ये नहीं कहते कि कान सुन रहा है, आप कहते हैं मैं सुन रहा हूं। आंख नहीं देख रही है, मैं देख रहा हूं। वो मैं किस अजूबे का नाम है कि जो इस सर से पैर तक हर जगह पे पाई जाती है, और हर जगह वो एक मुख्तलिफ काम कर रही है, और उन सब के बावजूद एक हकीकत है। उन सब डिफरेंट यानी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस के बावजूद वह एक हकीकत है। यानी ये आप नहीं कहेंगे कि खाया किसी और ने था, देखा किसी और ने है, सुना किसी और ने था, सब कुछ आप ही कर रहे हैं, और ये जितने भी इसके इफेक्ट्स हैं वो सब जाके एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं।
जो आप आमाल करते हैं और जो कोई भी करते हैं वो सब चीजें भी सब इकट्ठा हो
जी। तो इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये नफ्स, इतनी यानी इससे हमें समझ में आता है کہ جو علماء اور عرفا پھر وہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا خدا کے بارے میں کہ واجب الوجود جو ہے وہ بسیط حقیقت البسیطہ اور اس قسم کے جملے, مطلب دیٹ از ٹو ڈیپ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اس زندگی پہ. جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اس زندگی میں.
یا پھر جیسے کہ اگر میرے,
دیکھیں اس کو میں ایک طریقے سے بیان کروں, انہیں پہلے ہم بہت سادہ, کیونکہ وسیع بھائی نے کہہ دیا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں, گڑبڑ بات ہو رہی ہے, تو میں اب سادہ سادہ سے بیانات رکھتا ہوں, ڈیپ نہیں. جس طریقے سے کہ قرآن کریم میں ایک کنسیپٹ ہے اور حدیثوں میں بھی ہے باقیات الصالحات کا. باقیات الصالحات کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص نے کنواں کھدوا دیا, اب جب تک وہ کنواں اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں وہ مر چکا, اس کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے, لیکن اس تک ثواب پہنچ رہا ہے. ایک شخص نے ایک مدرسہ کھلوا دیا, تعلیم گاہ بنا, درسگاہ بنا دی, اب درسگاہ میں جب تک بچے پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں باقیات الصالحات, کہ انسان اپنے پیچھے باقی رہ جانے والی نیکیاں چھوڑ کے چلا جائے, خود بندہ چلا جائے.
یا پھر جو
ہم لوگ جمعرات کو اپنے فادر, جی ہاں ہاں وہ ہے, مطلب یہ کہ یہ آپ کا یعنی کہ وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ, حسن بھائی تھوڑا سا چلو, کہ آپ کیوں اس, یعنی یہ اب ایک تھوڑی سی گہری بات ہے کہ آپ کیوں کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, ایصال ثواب کرنے کی وجہ آپ ہیں یا وہ ہے جو مرا ہے, یہ کوشچن ہے. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایصال ثواب کرنے کی وجہ ہم نہیں ہوتے, بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. یعنی وہ ایسی چیزیں یہاں پر بنا کے گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. جی تو یعنی کہ اگر ہم یہ باقیات و صالحات اس زندگی میں چھوڑ جائیں, باقی رہنے والی نیکیاں, تو وہ چیز نہیں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے, انتقال کر جائیں گے, لیکن اچھائیاں ہم تک پہنچ رہی ہوں گی, اور یہی برزخ کا فنکشن ہے. یعنی برزخ میں اسی لیے روکا گیا ہے لوگوں کو یا بیچ میں ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ جس کی اگر برائیوں کے پیچھے سے سلسلے چل رہے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں, یا نیکیوں کے سلسلے چل رہے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں, اور اس کا اس بات کا مطلب یہ چیز فائنلائز ہو جائے کہ اسے کس رستے پہ جانا ہے یا بھیجا جانا ہے. تو یہ چیز کلیئر ہوئی روح اور نفس اور اس کے حوالے سے. تو یعنی کہ یہ چیز نہیں ہے, یعنی کہ یہ ہم نہیں کہ ہم کہیں کہ لوگ, جب ہم کہیں گے کہ لوگ بغیر روح کے ہیں تو مطلب یہ نہیں, بلکہ بغیر روح کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خدا نے جو ریسیور دیا تھا روح امری سے کنیکٹ ہونے کا, وہ انہوں نے خراب کر دیا.
تو یہ آپ جو ڈیفرنٹ روح کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں.
جی میں نے کہا نا روح از این انرجی, انسان مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں اس زندگی میں ان سب کے لیولز ہیں, ٹھیک ہے. یعنی سب سے نچلے لیول پر کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسے ہم نان لیونگ کہتے ہیں, لیکن قرآن کی نظر میں وہ نان لیونگ نہیں ہے, یعنی جیسے اینٹ پتھر, بلکہ اس کے اندر بھی ایک چیز ہے جو اس کو قائم کرتے رکھتی ہے, اس کو ایگزسٹ کرتی. اس کے بعد جب جہاں سے ہم لیونگ بینگز کا ذکر کرتے ہیں, یعنی پلانٹ, پلانٹ کنگڈم, تو پلانٹ کنگڈم میں بھی ایک ایفیکٹ ہے انرجی کا. وہ ایفیکٹ کیا ہے, جو نشو نما یعنی گروتھ کے حوالے سے, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پودا گرو کرتا ہے, بیج سے گرو کر کے پورا درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں, پھول آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو وہ انرجی جو یہ کام کرتی ہے, یعنی جس کا تعلق نشو نما سے, گروتھ سے, وہ روح نباتی ہے. دیٹ از سمپل, کوائٹ سمپل. لیکن جب یہی لائف فارم ایوالو ہو کے ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے, یعنی اینیمل کنگڈم پہ, اینیمل لیول پہ آ جاتی ہے, تو پھر اینیمل لیول پہ جو انرجیز ایٹ ورک ہیں وہ اتنی سمپل نہیں ہیں.
मतलब उसमें जैसे हम कहते हैं ना कुव्वत इदराकी भी है, कुव्वत इदराकी का मतलब कि परसेप्शन पावर भी आ जाती है, लोकोमोटिव पावर्स भी आ जाती हैं, डिसीशन मेकिंग की पावर्स भी आ जाती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बॉडी से नहीं आ रही हैं। इसका सबूत क्या है कि अगर ये सब चीज़ें फंक्शन ऑफ बॉडी होती तो कभी भी फिर बॉडी से अलग नहीं होती, उसी में ही रहती। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तमाम के तमाम फंक्शंस एक लिविंग बीइंग से ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी पड़ी रह जाती है लेकिन ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि वो चीज़ के जो जिस्म को ये सब कुछ करा रही थी, दैट वॉज समथिंग एल्स डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यानी कि
वो चीज़ आपकी बॉडी में या कोई भी किसी फॉर्म में बाय डिफॉल्ट रहती है?
नहीं, यानी कि जैसे देखें ना कि अभी इस वक्त मैं कहूँ कि मेरा रूह जिस्म नफ्स एक साथ है, सब एक साथ चल रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि जब जिस्म जिंदा था तो उसको जिंदा रखने वाली कुछ एनर्जी थी, उसमें कोई चीज़ वर्क कर रही थी जो अब इस बॉडी से डिटैच हो गई। ठीक है, और दूसरी बात हमें यह समझ में आ रही है कि वो एनर्जी इस बॉडी की वजह से नहीं थी, वरना अगर इस बॉडी की जाती क्वालिटी होती तो इससे इस तरीके से अलग नहीं हो जाती। यानी फॉर एग्जांपल मैसिव होना बॉडी की जाती पर्सनल क्वालिटी, इंडिविजुअल क्वालिटी वो उसमें मौजूद है। शेप और फॉर्म रखना बॉडी की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसमें मौजूद है, वो नहीं ख़त्म हुई उससे। लेकिन उससे चलना फिरना देखना, वही जो मैं कह रहा हूँ, कुव्वत इदराक, कुव्वत फैसला, कुव्वत हरकत, ये सब निकल गई उसमें से, जो इस बात का सबूत है कि जो इस जिस्म की ज़ाती खसूसियत थी वो इसके साथ है, जो इसकी ज़ाती खसूसियत नहीं थी बल्कि इससे कनेक्टेड थी वो जुदा हो गई।
वही तो वो एनर्जी है ना। अगर किसी जैसे वो मेढक की टांग वाला एक्सपेरिमेंट की उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा के तो मेढक की टांग चल रही है,
तो एनर्जी है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के साथ एक एनर्जी थी जो इसमें पाई जाती थी,
वो एनर्जी है।
ठीक है, आसान अल्फाज में समझने के लिए कि हकीकतन ऐसा नहीं है, लेकिन आसान क्योंकि एनर्जी खुद हमारे लिए मजहूल है। यानी मैं आपसे कहूँ एनर्जी क्या है तो हम नहीं डिफाइन कर सकेंगे एनर्जी को, एनर्जी की कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि लाइट आप देख नहीं सकते, लाइट आप पकड़ नहीं सकते, लाइट आप सेंस नहीं कर सकते, सिर्फ उसके इफेक्ट को सेंस कर सकते हैं। ये लाइट बजात खुद क्या चीज़ है कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है, तो ये बहरहाल उस चीज़ की तरफ हम आते हैं कि फिर ये हो गई एनिमल एनर्जी इस हद तक जो एनिमल फंक्शंस। लेकिन इंसान को वो आयत याद रखिएगा, देखिएगा उसको, बनी इसराइल 70 जो शुरू होती है यहाँ से, लकद करमना बनी आदमा, कि बेशक हमने करामत दी आदम की औलाद को। तो वहां उसमें एक जिक्र करामत का है, एक फजीलत का है। फजीलत यानी जो कुछ मखलूकात के पास है उसमें भी इंसान उनसे बेहतर है, और जो कुछ इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं पाई जाती। तो वो क्या चीज़ है जो इंसान के पास है और दूसरों के पास नहीं पाई जाती? वो रूह अमरी का कनेक्शन है। यानी ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो फकत इंसान को खुदा ने अता की है, बाकी मखलूकात के पास नहीं है। इसी वजह से हम ने आज तक किसी भी जानवर को, शेर और जितने भी जानवर हैं, इवन जो करीब तरीन कहा जाता है एप और चिंपैंजी, उसको भी हमने इस तरीके से बैठ के इंसानों की तरह मदरसे कायम करते हुए और ये सब कुछ करते नहीं देखा है कि जिसमें वो चीज़ों की हकीकत पे गौर कर रहे हों या इस किस्म के सवालात उठा रहे हों। तो ये वो कनेक्शन है, सही, ये डेफिनेशन है तकरीबन रूह की। और जब कुरान करीम ने भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, تو یہ وہ روح نہیں ہے جو حیوانات کے اندر پائی جاتی, بلکہ یہ وہ روح ہے جو وہ حقیقت بالا تر ہے جو ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے شب قدر. جی, یا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیت 85 میں کہ یس الونک عن الروح, اے پیغمبر یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں, قل الروح من امر ربی, تو کہو کہ روح کا تعلق روح میرے رب کے امر سے, یعنی اس مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ روح امری. سورہ بنی اسرائیل
کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ اسراء
نمبر 17.
تو حضرت بھائی اب اگر پریکٹیکل